आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत को तरक्की और इस्तेहकाम की एक मशन दिया करार। बजट की खसूसियात को किया उजागर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट 2024-25 पर बहस आज भी जारी। मुख्तलिफ मेम्बरों ने अपने अपने ख्याल का किया इजहार। नीट यूजी 2024 काउंसलिंग का पहला दौर 14 अगस्त से शुरू। और वायनाड केरला में पसियां गिराने की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 48। सदर जमहूरिया नायब सदर वजीर अजम और जम्मू कश्मीर के एलजी ने किया दुख और सदमे का इजहार। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की जीडीपी 8% शरह से तरक्की कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत का मकाम हासिल करेगा। नई दिल्ली में आज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत पोस्ट यूनियन बजट 2024-25 कॉन्फ्रेंस की इफ्तताही तकरीब से खिताब करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोविड वबा का मुकाबला करने के बावजूद भारत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम सेक्टरों की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए है। वजीर अजम ने कहा कि जिस रफ्तार और स्केल से हुकूमत बुनियादी ढांचा तामीर कर रही है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि 2004 में यूपीए हुकूमत के पहले बजट में कैपिटल अखराजात लगभग 90,000 करोड़ रुपए थे, जो 2014 में बढ़कर 2,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए और अब कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,00,000 करोड़ रुपए से भी तजावज कर गया है। वजीर अजम ने मजीद कहा कि बजट का हजम अब 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है और यह अब 48,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वजारतों की एलोकेशन में रिकॉर्ड इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की सतह से बाहर लाया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी लाने और आम शहरियों की जिंदगी आसान बनाने की तरफ तरजीह दे रही है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की आज की पॉलिसी अजम वलवले और अहम फैसला साजी की बदौलत पूरी दुनिया यहां सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत तरक्की और इस्तेहकाम की एक मशन है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत का इरादा वाजह है कि यह विकसित भारत को यकीनी बनाने के लिए अजम और जोश जज्बे के साथ काम कर रही है। आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किया था, जिसका मकसद तरक्की के लिए हुकूमत के वसी नजरिया और इसमें सन्नतों के रोल से मुतलिक उमूर पर तबादला ख्याल करना था। लोकसभा में आज 2024-25 के आम बजट पर बहस दोबारा शुरू हुई। बहस में शिरकत करते हुए बीजेपी के देवेंद्र सिंह ने कहा कि बजट मुल्क को शमूलियाती तरक्की की एक नई राह पर गामजन करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की बहबूदी के लिए वादबंद है और जरूरी सेक्टर के लिए मरकजी बजट में काफी रकूमत मुख्तस रखी गई है, जिससे मुल्क में नामियाती काश्तकारी अपने उरूज को पहुंच जाएगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रवां साल का बजट बेरोजगारी से निपटने और देही इलाकों की तरक्की के ताल्लुक से खामोश है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रोजेक्ट का बड़ा ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम की तजवीज नहीं रखी गई है। राज्यसभा में भी आज आम बजट 2024-25 शुरू हुई। बहस में शिरकत करते हुए एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हुकूमत ने माली नज्म जब्त का लाहे अमल इख्तियार करके 2014 से मुल्क के इकतसादी मंजरनामे को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि रवा बजट के दौरान नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सड़कों के नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट्स और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों को बड़े पैमाने पर तरक्की से हमकिनार कराया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 2-1 वर्षों के दौरान पैदावारी सरगर्मियों में भी इजाफा देखने को मिला। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भुवनेश्वर कालेटा ने इस तरह के ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि इस साल के बजट में गरीबों, किसानों, नौजवानों, खवातीन, मुतवस्त तबके को मलहूज नजर रखा गया है। नीज बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 25 करोड़ लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकाला। इसके अलावा हुकूमत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन फराहम कर रही है। केरला के वायनाड जिले में बड़े पैमाने पर पसिया गिराने की वजह से 48 अफराद मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है क्योंकि मुतासर इलाके में काफी लोग अभी भी मिट्टी और मलबे के अंदर दबे हुए हैं। हादसे में जख्मी हुए 122 अफराद को वायनाड के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक अभी भी 100 से ज्यादा अफराद लापता है। कोची में दिफाई जराये ने कहा है कि भारतीय बहरिया से ताल्लुक रखने वाले 30 तरबियत याफ्ता तैराकों को इलाके में तैनात किया गया है। बचाव टीमें शद्दोमद से जारी और राहत के काम में जुटी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े में महलुकेन के करीबी रिश्तेदारों को वज़ीर-ए-आज़म के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रूपये की इमदाद दिए जाने का ऐलान किया है। जख्मी को 50-50 हजार रूपये दिए जायेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने केरला के वज़ीर आला पन्नाराय विजयन से बात की और उन्हें मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर अजम ने कहा कि मुतासर लोगों की मदद करने के लिए फिलहाल बचाव कार्रवाइयां जारी है। वजीर अजम ने उन कुंभों के तहत ताजियत का इजहार किया जिन्होंने इस वाक़े में अपनी जान गंवाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े में जानों के अतलाफ पर ताजियत का इजहार किया है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी और इमदादी कार्रवाइयों की कामयाबी की दुआ की है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वायनाड के मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े में महलुकेन के कुंभों के तई ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम तलाशी और बचाव की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर अंजाम दे रही है। इस वाक़े में जान गंवाने वालों के लिए दुख का इजहार करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हर किसी हिफाजत और बहबूद की दुआ की है। लोकसभा में हिजब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने मरकजी सरकार से दरख्वास्त की है कि वह वायनाड केरला में पसियां गिर आने से मुतासर इलाकों में बचाव कार्रवाइयों को तकवीयत बख्शने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करे। लोकसभा में आज वक्फे सफर के दौरान यह मामला उठाते हुए राहुल गांधी ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लाइनें बहाल करने के साथ साथ रिलीफ कैंप कायम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के दौरान मुल्क में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पसियां गिराने वाले इलाकों की फौरी तौर पर मैपिंग की जानी चाहिए और एहतियाती तदाबीर को भी जमीनी सतह पर अमलाया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केरला के वायनाड जिले में पसियां गिराने की वजह से हुए कीमती जानों के जिया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने एक पैगाम में एलजी ने सोगवार कुंभों के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की फौरी सेहतियाबी के लिए दुआ की है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। नीट यूजी 2024 काउंसलिंग का पहला राउंड 14 अगस्त से शुरू होगा। राज्यसभा में आज कई जिम्मेदारियों का जवाब देते हुए सेहत की वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक काउंसलिंग 4 राउंडों में मुनक्कद होगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन का अमल अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा। उन्होंने मजीद कहा कि काउंसलिंग का पहला राउंड 14 अगस्त से 23 अगस्त तक मुनक्कद किया जाएगा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक मजमू तौर पर 4,70,000 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। आज यात्रा के दोनों रास्तों से लगभग 4,500 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटू ने खबर दी है कि यात्रियों के लिए तिबी निगहदाश्त बैतुलखला टेंटों और खाने पीने के साथ साथ दीगर सहूलियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू के बुनियादी कैंप से लेकर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के साथ साथ पहलगाम और बालतल तक गैर सरकारी तंजीमों और मजहबी ग्रुपों की तरफ से 132 लंगर कायम किए गए हैं। इन लंगरों में यात्रियों को साफ शफाफ खाना फराहम किया जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने आज जिला अफसरों की एक मीटिंग में तीरथ राज कपाल मोचन स्थापन में मुनक्कद किए जाने वाले हवन श्रावण बाह के बारे में इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलक अफसरों को हिदायत दी कि वह इस फेस्टिवल के बेहतर इनकाद के लिए कपाल मोचन मंदिर के आसपास वाले इलाकों में बिला खलल बिजली और पानी की सप्लाई के साथ साथ सफाई सुथराई को यकीनी बनाए। उन्होंने वहां जाने वाले अकीदतमंदों के लिए तिबी निगहदाश्त की सहूलियात भी मयसर रखने की हिदायत दी। سی آئی کے کی جانب سے آج JIC ہمہامہ سری نگر میں CIK کے وابستہ افسروں اور ملازمین کے لیے فوجداری کے 3 نئے قوانین اور کرمیوگی پورٹل کی نسبت سے ایک تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا. CIK کے چیف پروسیکیوشن آفیسر اعجاز احمد نے کرمیوگی پورٹل پر اندراج کرانے اور اس پورٹل سے نئے فوجداری قوانین کے بارے میں آن لائن تربیت لینے نیز اس طرح کے تربیتی پروگراموں کے انعقاد کی اہمیت اجاگر کی. اس موقع پر بتایا گیا کہ صلاحیت سازی کا یہ پروگرام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک CIK کے سبھی آفیسر اور ملازمین کرمیوگی پورٹل پر اندراج کریں گے. ووٹر فہرست میں رائے دہندگان کے خصوصی اندراج کے دوسرے مرحلے کی ایک کڑی کے تحت ضلع الیکشن اتھارٹی سری نگر کی جانب سے سلسلہ وار پروگراموں اور مہمات کا انعقاد کیا گیا. ان پروگراموں کا مقصد لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کو ووٹر فہرستوں میں اپنا اندراج کرانے کی ترغیب دینا ہے. اس طرح کے پروگرام مختلف کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں منعقد کیے گئے جن میں عام لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی. سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے آج سری نگر کے مختلف اسپتالوں کا دورہ کر کے وہاں مریضوں کو دی جا رہی سہولیات کے بارے میں جانکاری دی. انہوں نے اسپتالوں کے معائنے کے دوران مریضوں اور تیمارداروں کے ساتھ بات کی اور سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے JLNM اسپتال، غوثیہ اسپتال اور دیگر پرائمری ہیلتھ سینٹروں میں ہاتھ میں لیے گئے کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ لوگوں تک معیاری طبی سہولیات بہم پہنچانے کی وعدہ بند ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ UT میں نوجوانوں کو آگے لا کر انہیں فیصلہ سازی سے لے کر تمام شعبوں میں شامل کیا جانا چاہیے. انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ انتظامیہ نوجوانوں کی بہبودی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کی وجہ سے یہاں کے نوجوان پریشان ہیں. اننت ناگ کے ضلع ترقیاتی کمشنر SF حامد نے شاہکار سے سمردھی اسکیم کے تحت سری گفوارہ علاقے میں 5ویں پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندر کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کیندر لوگوں کو موزون نرخوں پر معیاری ادویات فراہم کر رہے ہیں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ان مراکز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج گاندربل ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں زرعی منظرنامے کا جائزہ لیا. انہوں نے کئی مقامات پر دھان اور سبزی کی کھیتوں کا معائنہ کیا. انہوں نے ضلع میں قائم کیے گئے کسان خدمت گھروں کا بھی دورہ کیا. ڈائریکٹر موصف نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لاتے ہوئے سرکار کی بہبودی اسکیموں سے استفادہ کر کے اپنی آمدن میں اضافہ کریں. حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جاری ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے اگلے سال کے حج کے سلسلے میں پہلے ہی تیاری شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حج کمیٹی نے کہا ہے کہ حج 2025 کے لئے درخواستیں اگلے مہینے کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جاری کی جا سکتی ہیں. کمیٹی نے اگلے برس سفر محمود پر جانے کے خواہش مند افراد سے کہا ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ تیار رکھیں تاکہ وہ حج کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی بلا کسی رکاوٹ کے اپنا حج فارم بھر سکیں. خواہش مند عازمین کا پاسپورٹ 15 جنوری 2026 تک ویلڈ ہونا چاہیے. پیرس اولمپکس میں منوبھاکر اور سربجوت سنگھ نے آج 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ مقابلے میں جنوبی کوریا کی جوڑی اوہ یو جن اور لی وون ہو کو 16-10 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ جیت لیا. اس جیت کے بعد منو نے اپنا نام باقی کھیل کی تاریخ میں درج کرایا ہے کیونکہ وہ پہلی بھارتی ایتھلیٹ بن گئی ہے جنہوں نے اولمپکس کے ایک ہی شمارے میں 2 میڈل حاصل کیے ہیں. دوسری طرف سربجوت نے اپنا پہلا اولمپک میڈل حاصل کیا. اس سے پہلے منو نے خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ جیتا تھا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی کا وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے سے متعلق کانفرنس سے خطاب. بھارت کو ترقی اور استحکام کی ایک مشن دیا قرار. بجٹ کی خصوصیات کو کیا اجاگر. پارلیمنٹ کے دونوں ایوان میں بجٹ 2024-25 پر بحث آج بھی جاری. مختلف ممبروں نے اپنے اپنے خیالات کا کیا اظہار. نیٹ UG 2024 کاؤنسلنگ کا پہلا دور 14 اگست سے شروع. اور وائناڈ کیرلا میں پسیاں گرانے کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48. صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم اور جموں کشمیر کے LG نے کیا دکھ اور صدمے کا اظہار. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.